अध्याय 18 त्रिवंशी संघर्ष प्रतिहार पाल और राजकूट वंश। प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में अवंती में हुई थी। हरिवंश के एक शासक वत्सराज को अवंती भूभृत कहता है। राजकूट नरेश अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र से प्राप्त होता है कि दंती दुर्ग ने एक महादान किया था। इस अवसर पर उसने गुर्जर प्रतिहार नरेश को उज्जैन में प्रतिहार बनाया था। इस कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिहार वंश का उदय अवंती में हुआ था। यह वंश क्षत्रिय जाति था। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश वत्सराज और नागभट द्वितीय को क्षत्रिय कहा गया है। यही अभिलेख प्रतिहार वंश को सौमित्र से उत्पन्न बताता है। राजशेखर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल तथा महीपाल प्रथम को क्रमशः रघुकुल तिलक और रघुवंश मुकुटमणि कहता है। इस वंश का संस्थापक नागभट प्रथम था। तत्पश्चात देवराज और वत्सराज ने क्रमशः राज्य किया। ये सभी अवंती के राजा थे। चौथा राजा नागभट द्वितीय एक प्रतापी राजा था। उसने कन्नौज की विजय की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से कन्नौज प्रतिहार सत्ता का केंद्र बन गया। पाल वंश। इस वंश की स्थापना गोपाल नामक एक व्यक्ति ने की थी। दीर्घकालीन अराजकता का अंत करने के लिए बंगाल की जनता ने इसे अपना राजा चुना। राजा बनने के पूर्व गोपाल एक सेनापति था। गोपाल ने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक राज्य किया। इसके पश्चात धर्मपाल और देवपाल नामक दो राजा हुए। इनके समय से पाल वंश भारत के प्रमुख राजवंशों में गिना जाने लगा। राजकूट वंश। यह वंश प्रतिहार और पाल वंशों का समकालीन था। अशोक के अभिलेखों में रतिकों का उल्लेख हुआ है। नागानिका के नाना घाट अभिलेख में महारठियों का उल्लेख है। डॉक्टर टेकर का मत है कि राजकूट इन्हीं रठिकों की संतान थे। अभिलेखों में राजकूटों को लट्ठुलूर पूर्वाधीश कहा गया है। अतः वे लट्ठुलूर के मूल निवासी प्रतीत होते हैं। लट्ठुलूर संभवतः भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के वेदर जिले का लाटूर था। निर्बल कानिकुब्ज राज्य। जिस समय भारतवर्ष में उपयुक्त तीनों वंश अपना अपना राज्य बढ़ाने की योजनाएं बना रहे थे, उसी समय कानिकुब्ज में निर्बल आयुध वंश का राज्य था। इस वंश का उदय यशोवर्मा की मृत्यु के पश्चात हुआ था। इनमें तीन राजा हुए, वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध। इन्होंने लगभग 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की निर्बलता से प्रोत्साहित होकर प्रतिहार और पाल दोनों वंशों ने कानिकुब्ज राज्य को अपने अधिकार में करने की चेष्टा की। अवसर पाकर दक्षिणी भारत के राजकूट वंश ने भी उत्तरी भारत की राजनीति में भाग लिया। परिणामतः इन तीनों वंशों के बीच दीर्घकालीन संघर्ष का सूत्रपात हुआ। इसी संघर्ष को त्रिवंशी संघर्ष कहते हैं। त्रिवंशी संघर्ष। प्रतिहार। अवंती के प्रतिहार वंश का सर्वप्रतापी राजा वत्सराज था। उसने 780 ईस्वी से 805 ईस्वी तक शासन किया। 483 ईस्वी के लगभग इसने कानिकुब्ज पर आक्रमण किया और वहां के राजा इंद्रायुध को अपने प्रभाव में रहने के लिए विवश किया। इस समय बंगाल में पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल का राज्य था। वह प्रतिहार वंश की बढ़ती हुई शक्ति के प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। अतः उसने वत्सराज को चुनौती दी। दोनों में युद्ध हुआ। इसमें वत्सराज विजयी हुआ। इस युद्ध के निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं। पहला, रागनपुन दान पत्र से प्रकट होता है कि वत्सराज ने बंगाल के राजा के दो छत्रों और यश को हर लिया था। धर्मपाल गौण और वंग दोनों प्रदेशों का राजा था। इसी से उसके दो छत्रों का उल्लेख किया गया है। दूसरा, वनिडोरी लेख से विदित होता है कि वत्सराज ने सरलता से धर्मराज को हरा दिया था। तीसरा, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ का कथन है कि चहमान नरेश दुर्लभ राज ने गौर नरेश के विरुद्ध युद्ध किया था और अपनी तलवार को गंगा और समुद्र के संगम में स्नान आया था। दुर्लभ राज वत्सराज का सामंत था। उसने अपने स्वामी के लिए ही धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध किया था। डॉक्टर मजूमदार के कथनानुसार वत्सराज और धर्मपाल का युद्ध गंगा यमुना के दोआब में हुआ था, परंतु यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि पृथ्वीराज विजय से विदित होता है कि यह युद्ध बंगाल में हुआ था। राष्ट्रकूट आक्रमण। इसी समय राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और वत्सराज को पराजित किया। रागनपुर और वनिडिडोरी अभिलेखों से विदित होता है कि अपनी इस पराजय के पश्चात वत्सराज को मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। अब पाल नरेश धर्मपाल की बारी आई। संजन और सूरत अभिलेखों से प्रकट होता है कि ध्रुव ने धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब में पराजित किया। बड़ौदा अभिलेख से प्रकट होता है कि उसने गंगा यमुना के दोआब पर अपना अधिकार कर लिया था, धर्मपाल का प्रभुत्व। परंतु उत्तरी भारत की विजय के पश्चात राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव वापस चला गया। उसने जाने के पश्चात धर्मपाल ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया और कानिकुब्ज पर आक्रमण करके उसके राजा इंद्रायुध को सिंहासन से उतार दिया था। उसने पक्षपाती चक्रायुद्ध को कान्यकुब्ज का राजा बनाया। तत्पश्चात उसने कान्यकुब्ज में एक विशाल दरबार किया। भागलपुर ताम्रपत्र और खलीमपुर ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि इस दरबार में भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यमन, अवंती, गंधार और कीर के राजाओं को आमंत्रित किया गया था। यहाँ अवंती नरेश से बसराज का तात्पर्य है। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि ये समस्त राज्य धर्मपाल के अधीन थे। इस प्रकार धर्मपाल कुछ समय के लिए उत्तरी भारत का सर्वशक्तिशाली सम्राट बन गया। गुजराती लेखक सौडल अपनी उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी कहता है। नागभद्र द्वितीय और गोविंद तृतीय 805 ईस्वी में वसराज की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नागभद्र द्वितीय सिंहासन पर बैठा है। उसने 805 से 833 ईस्वी तक शासन किया। इस समय दक्षिण में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय का शासन था। उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। उसकी सफलता का वर्णन अनेक अभिलेखों में हुआ है। पहला संजन ताम्रपत्र, इसके अनुसार गोविंद तृतीय ने नागभट्ट और चंद्रगुप्त दोनों के यश को नष्ट कर दिया था। दूसरा पठारी स्तंभ लेख, इसका कथन है कि कर्कराज ने नागावलोक को युद्ध में पराजित किया था। कर्कराज गोविंद तृतीय का सामंत था और नागावलोक नागभट्ट द्वितीय का। तीसरा राघनपुर ताम्रपत्र, इसका कथन है कि गोविंद तृतीय के भय से नागभट्ट विलुप्त हो गया था, जिसने उसे स्वप्न में भी युद्ध न दिखाई पड़े। धर्मपाल और गोविंद तृतीय संजन ताम्रपत्र से विदित होता है कि बंगाल नरेश धर्मपाल और उसके द्वारा संरक्षित कन्नौज नरेश चक्रायुद्ध ने स्वयं ही गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार गोविंद तृतीय के नेतृत्व में एक बार फिर राष्ट्रकूट वंश ने उत्तरी भारत को पदाक्रांत कर डाला। परंतु दुर्ग की भांति उसने भी उत्तरी भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। अपनी विजयों के पश्चात वह अपने राज्य लौट गया। नागभट्ट की कन्नौज विजय, गोविंद तृतीय की अनुपस्थिति से नागभट्ट द्वितीय ने पूरा लाभ उठाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रायुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात कन्नौज प्रतिहार राज्य की राजधानी बन गया। धर्मपाल की पराजय, चक्रायुद्ध की पराजय का समाचार पाकर धर्मपाल ने नागभट्ट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु ग्वालियर अभिलेख नागभट्ट ने उसे भी परास्त कर दिया। धर्मपाल की पराजय का साक्ष्य बड़ौदा अभिलेख से भी प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है कि गुर्जर नरेश गौड़वंज नरेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण अभिमानी हो गया था। जिस प्रकार जोधपुर अभिलेख से प्रकट होता है कि नागभट्ट द्वितीय के सामंत कक्क ने मुद्दगिरी में गौड़ों से युद्ध करते हुए यश प्राप्त किया था। इस कथन से स्पष्ट है कि कक्क नागभट्ट द्वितीय की ओर से धर्मपाल से लड़ा था और यह युद्ध मुंगेर में हुआ था। इस प्रकार त्रिवंशी संघर्ष में अतंतुगत्वा प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को सर्वाधिक लाभ हुआ और वह उत्तरी भारत का सर्वशक्तिशाली सम्राट बन गया। मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र सिंहासनासीन हुआ। उसने 833 ईस्वी से 836 तक शासन किया। यह एक निर्बल राजा था, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसका पालो अथवा राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध हुआ था। रामभद्र के पश्चात मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का राजा हुआ। इसने 836 से 885 तक राज्य किया। यह अपने समय का महान प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। राष्ट्रकूटों से युद्ध, इस समय राष्ट्रकूट वंश पे अमोघ वर्ष का निर्बल शासन था। सिंहासन पर बैठने के समय उसकी आयु 11-12 वर्ष की थी। उसने 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक शासन किया। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट राज्य के उज्जैन प्रदेश पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया, परंतु उज्जैन पर प्रतिहारों का अधिकार अधिक समय तक न रहा। बगुरुमा दान पत्र से विदित होता है कि गुजरात शाखा के राष्ट्रकूट ध्रुव ने मिहिर भोज को पराजित कर दिया था। अमोघ वर्ष के पश्चात उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश हुआ। उसके समय में प्रतिहार वंश के साथ शत्रुता चलती रही। शत्रुता का विशेष कारण मालवा था। दोनों ही वंश इस पर अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। इस संबंध में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे यह निश्चित रूप से विदित नहीं होता कि विजय किसकी हुई थी, क्योंकि अभिलेख अपने अपने वंश की विजय का दावा करते हैं। इस परिस्थिति में यह अनुमान किया जा सकता है कि युद्ध पूर्ण रूप से निर्णात्मक नहीं हुआ। पहला बर्तुन संग्रहालय अभिलेख से प्रकट होता है कि मिहिर भोज ने कृष्ण द्वितीय की सेना को भगा दिया था। दूसरा परंतु बगुरुमा ताम्रपत्र का कथन है कि राष्ट्रकूटों ने उज्जैन में भोज को पराजित किया। पालों से युद्ध, इस समय पाल वंश में देवपाल पराक्रमी नरेश राज्य कर रहा था। इसके शासन काल में भी प्रतिहार पाल संघर्ष चलता रहा। पहला ग्वालियर अभिलेख से प्रकट होता है कि मिहिर भोज ने धर्मपाल के पुत्र देवपाल को पराजित किया। दूसरा कहला अभिलेख भी पाल नरेश के विरुद्ध मीर भोज की विजय का उल्लेख करता है। मीर भोज के सामंत गुणाम्बोधि देव ने गौड़ लक्ष्मी का अपहरण कर लिया था। तीसरा, परंतु बदल अभिलेख का कथन है कि पाल नरेश देवपाल ने गुर्जरनाथ का दर्प नष्ट कर दिया। इन परस्पर विरोधी लेखों से अनुमान लगाया जा सकता है कि पालों और प्रतिहारों का युद्ध भी अनिर्णित रहा था। सुलेमान का उल्लेख, अरब यात्री सुलेमान इस काल में भारत आया था। उसके वर्णन से भी प्रकट होता है कि रुहमी की बतलहरा और गुज से शत्रुता थी। राष्ट्रकूट सेना और प्रतिहार सेना की अपेक्षा पाल सेना बहुसंख्यक थी। महेंद्र पाल प्रथम और पाल मीर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम ने 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। पाल वंश का राजा नारायण पाल इसका समकालीन था। मीर भोज के अभिलेख उत्तर प्रदेश के पूर्व में प्राप्त नहीं होते, परंतु महेंद्र पाल प्रथम के 3 अभिलेख बिहार में और 1 अभिलेख बंगाल में प्राप्त हुआ है। इनके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि महेंद्र पाल ने नेपाल नरेश नारायण पाल को पराजित कर बंगाल के कुछ भाग और बिहार पर अधिकार कर लिया था। इस निष्कर्ष की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मगध में नारायण पाल का कोई भी अभिलेख उसके शासन के 17वें वर्ष से लेकर 37वें वर्ष तक नहीं मिला है, परंतु 908 ईस्वी में इसका एक लेख मगध में मिलता है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उसने मगध पर पुनः अधिकार कर लिया था। पाल और राष्ट्रकूट सिरूर अभिलेख का कथन है कि अंग बंग मगध तथा बेंगी के राजा राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के अधीन थे। इस आधार पर डॉक्टर मजूमदार का मत है कि अमोघवर्ष ने पाल नरेश नारायण पाल को पराजित किया था, परंतु इस मत के पक्ष में कोई अन्य प्रमाण नहीं है। नारायण पाल अमोघवर्ण के पुत्र तथा उत्तराधिकारी कृष्ण द्विवेदी का भी समकालीन था। उत्तर पुराण के परिशिष्ट से प्रकट होता है कि कृष्ण द्विवेदी के हाथियों ने गंगा नदी का पानी पिया था। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि कृष्ण द्विवेदी ने बंगाल पर आक्रमण किया था और उसके राजा नारायण पाल को पराजित किया था, परंतु अन्य प्रमाणों के अभाव में यह मत भी संदिग्ध है। भोज द्विती महेंद्र पाल के पश्चात उसके पुत्र भोज द्विती ने 910 ईस्वी से 913 ईस्वी तक राज्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे उसके भाई महीपाल प्रथम ने पराजित कर दिया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। महीपाल प्रथम, इसे विनायक पाल और हेरम्ब पाल भी कहते हैं, इसने 913 से 945 तक शासन किया। यह प्रतिहार वंश का एक प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। राष्ट्रकूटों से युद्ध, इस समय राष्ट्रकूट वंश में इंद्रतिति का राज्य था। कांबे दान पत्र से प्रकट होता है कि इंद्र ने मालवा पर आक्रमण किया। उसके गजों ने अपने दांतों के घातों से भगवान कालप्री के मंदिर के प्रांगण को विषम बना दिया। तत्पश्चात यमुना को पार करके शत्रु नगर महोदय पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। महीपाल भाग खड़ा हुआ। इंद्र के सेनापति नरसिंह चालुक्य ने उसका प्रयाग तक पीछा किया और अपने घोड़ों को गंगा और यमुना के संगम में नहलाया। पालों से संबंध, पाल वंश के 2 राजा राज्यपाल और गोपाल द्विती प्रतिहार नरेश महीपाल के समकालीन थे। अभिलेखों से प्रकट होता है कि इन दोनों के अधीन बंगाल और मगध थे। इसके साथ साथ इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं कि इन्हें प्रतिहारों से युद्ध करना पड़ा हो। सारांशतः इस काल में प्रतिहारों और पालों के बीच शांति रही। राष्ट्रकूटों से पुनः युद्ध, इंद्र तृतीय के पश्चात उसका पुत्र अमोघवर्ष द्विती सिंहासनासीन हुआ। इसे सिंहासन से उतार कर अथवा मार कर उसका भाई गोविंद चतुर्थ राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ। इसने 923 से 936 तक शासन किया। यह अत्यंत विलासी व्यक्ति था। इसके शासन काल में राष्ट्रकूट राज्य की शक्ति का हास होने लगा। गोविंद चतुर्थ को सिंहासन से उतार कर उसके चाचा अमोघवर्ष तृतीय को 936 में राजा बनाया। इसने 936 से 939 तक शासन किया। इस प्रकार इंद्र तृतीय, अमोघवर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ और अमोघवर्ष तृतीय सभी प्रतिहार नरेश महीपाल के समकालीन थे। ऐसा प्रतीत होता है कि महीपाल ने राष्ट्रकूट वंश की निर्बलता से पूरा लाभ उठाया। उसने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। क्षेमेश्वर के नाटक चंड कौशिकम में महीपाल की कर्नाट विजय का उल्लेख है। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि कर्नाटों से राष्ट्रकूटों का आश्रय है। देवली और करहाद अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अमोघवर्ष तृतीय के युवराज कृष्ण ने गुर्जर को पराजित कर उससे कालंजर और चित्रकूट छीन लिए। संभवतः यह गुर्जर महीपाल प्रथम था। अरब यात्री अलम सुंदी भी लिखता है कि प्रतिहार नरेश बऊर और बलहर में शत्रुता थी और बाउर ने राष्ट्रकूटों से अपनी रक्षा के लिए दक्षिण में एक पृथक सेना रखी थी। महीपाल प्रथम के उत्तराधिकारी महीपाल प्रथम के पश्चात प्रतिहार वंश में अनेक निर्बल राजा हुए। ये तत्कालीन संकटमय और संघर्षपूर्ण स्थिति में अपने राज्य की रक्षा न कर सके और धीरे धीरे उसका विलोप हो गया। नारायण पाल के पश्चात पाल वंश भी पतनोन्मुख था, अतः यह वंश भी प्रतिहारों की निर्बलता का लाभ उठाकर उत्तरी भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने के लिए नितांत अशक्त था। 939 ईस्वी में अमोघवर्ष तिथि की मृत्यु के पश्चात कृष्ण तिथि राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ। इसने 939 ईस्वी से 938 ईस्वी तक शासन किया। यह परम पराक्रमी नरेश था, परंतु इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि इसने उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। कृष्ण तिथि के पश्चात राष्ट्रकूट राज्य की भी अवनति होने लगी और स्नेह वह भी छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार तीनों वंशों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के पतन के साथ साथ दीर्घकालीन त्रिवंशीय संघर्ष का अंत हुआ।